अस्सलाम
वालेकुम। सलाम।
अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन इशू है हमारा और अक्सर इसके ऊपर बड़ी डिबेट्स भी होती हैं कि हज़रत आयशा की एज जो है उनकी शादी के वक्त, वो आमतौर पे कहा जाता है कि वो 9 साल या कई जगहों पर आता है, फिर 6 साल। तो ये एक बड़ा मुश्किल मामला है मुसलमानों के लिए, जिसके ऊपर बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं?
देखिए, हज़रत आयशा की उम्र पे एतराज़ करना जो है ना, दो सतह के ऊपर इसका आपका जो सवाल है ना, उसकी दो शाखें हैं। एक तो ये कि क्या ये बात तहकीक से वाज़े है कि हज़रत आयशा की उम्र इतनी थी? तो काफ़ी जगहों के ऊपर इसके इसने कंप्लीट एंगल्स से मिलती है। एक हदीस जो है तो अबू बकर के साथ जब पहली दफ़ा ये बात की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया है, तो उनका जो रिएक्शन था वो भी रिकॉर्डेड है। सो ये बात जो सोचना कि क्या ये बात सही है कि नहीं, तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक बड़ी अमूमी राय चल रही है आजकल यूथ में कि नहीं, ये तो मुअर्रिखीन ने खुद ही लिख दिया, असल में ऐसा कुछ नहीं था। उनके अंदर फिर एक मसला है, उनको उनकी साइकोलॉजी में इशू आ चुका है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे, क्योंकि इससे जो दूसरा पॉइंट निकलता है वो ये है कि आपको ये मसला क्यों दरपेश आ रहा है कि आयशा की उम्र क्या थी। That actually is indicating a problem in your basic psychological construct of your belief. क्योंकि आयशा की उम्र के ऊपर एतराज़ करना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत पे एतराज़ करना है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये सारे वाक़यात अल्लाह ताला के यहाँ कोई कोइंसिडेंस नहीं होते। अल्लाह ताला हर चीज़ बाय डिज़ाइन करवा रहे होते हैं, स्पेशली अपने अंबिया के ऊपर। तो वो कयामत तक के आखिरी बंदे ने जो पैदा होना है उसके लिए उसकी रहनुमाई हो रही होती है, एक एक इवेंट्स के साथ जो कि किसी भी नबी के साथ हो रहा हो, स्पेशली जो कुरान पाक में आ जाए, जो प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी लाइफ में हुआ। सो वेन एवर वी एक्चुअली स्टार्ट टू और वेन वी गेट अ क्वेश्चन स्पेशली इन द वेस्ट कि योर प्रॉफिट मैरिड अ 9-year-old, तो यू हैव टू एक्चुअली नेचुरली have a disposition that he's actually conflicting to the very pedestal of prophethood of the of our prophet sallallahu alaihi wasallam, warna to ye masla hona nahi tha. To jab musalmanon ko khud bhi is bare mein uljhan shuru ho jaye to uska matlab hai unki allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam ki nabuwat ke upar jo iman rakhna hai na uske wo dagmaga gaya. Main uska saboot deta hu ko psychology se. 3000 saal pehle कुरान पाक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से 3000 साल पहले ज़्यादा अजीब व गरीब वाक़या और वाक़यात की लिस्ट पे हमें कभी एतराज़ नहीं किया। 9 साल की बच्ची से शादी करने के ऊपर एतराज़ हो रहा है हमारे मुसलमानों को, और इन्हीं मुसलमानों को कभी 6 साल के बच्चे को ज़बह करने पर एतराज़ नहीं हुआ। कभी भी नहीं मैंने सुना, स्पेशली वेस्ट में, कि 6 साल का बच्चा इब्राहिम ने ज़बह क्यों किया अपने बेटे को। तूने तो छुरी चला दी थी, ठीक है, वो तो बाद में एक बकरा आ गया ना उधर, तो दुम्बा आ गया, वरना तो नबी ने तो छुरी चला दी थी, और यही तो इम्तहान था उसका। और ये कोई इम्तहान नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से शादी की, इम्तहान तो ज़ैनब से शादी करने के ऊपर था, ठीक है। वो तो अरब ने इतराज़ किया था, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इतराज़ को कैसे काउंटर किया, तो हम उसका आंसर दे रहे था। मगर चूंकि मुसलमानों का इल्म भी ज़रा कम है, उनको ज़ैनब की शादी का पता भी नहीं है ज़्यादातर को, तो वेस्ट जो है वो उस बारे में इसलिए वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता। जो आयशा के ऊपर एतराज़ करते हैं वो वही लोग एतराज़ करते हैं जो खुद अपने नबी को 6 साल के बच्चे पर छुरी चलाने के ऊपर डिफेंड करते हैं, क्योंकि उनको उसके नबी होने के ऊपर मसला नहीं है इब्राहिम के। हमें चूंकि अपने नबी के नबी होने के ऊपर मसला है, इसलिए हम इस एतराज़ में की जद में आ जाते हैं, वरना इसकी जद में आ ही नहीं सकता मुसलमान कि यार अल्लाह ताला का हुक्म है, जो भी हुक्म है। दूसरी बात, मैं एज अ मुस्लिम आपको बता रहा हूँ, थिंकिंग मुस्लिम, इस बात की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह का हुक्म था कि नहीं था, नाउज़ बिल्ला। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई बात की है तो आप उसके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं ये सोचने की कि अगर अल्लाह का हुक्म था या नहीं था, ये सोचना ही मुकदमा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत के ऊपर कि वाई डिड ही गो टूवर्ड्स दिस डिसीजन। सो ये जो मुसलमान ये सोचते ना कि यार 9 साल की बच्ची से शादी की, उसको असल में ये साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट ये होना चाहिए था कि अगर प्रोफेसर ने 9 साल की बच्ची से शादी की है तो हमें इसके फायदे और से और फायदे बताएं, इसको मुकदमे के तौर पर जो देखता है उसके ईमान में शिद्दत से कमी है, और फिर उसके ऊपर वो वाला बंदा जो भी इसके उसको ये प्रूव करने के लिए ये खोज लगाना शुरू हो जाए कि नहीं 9 साल नहीं होंगी, 29 साल होंगी, एक ने तो कह दिया 48 साल की उम्र है, ठीक है। और मैंने खुद सुना एक साहब तो कह रहे थे कि ये तो मुरखीन ने लिखा हुआ है, असल में तो सुन्नत हदीस है नहीं इसके ऊपर। सो हज़ार ऐसी चीज़ें जो मुरखीन से हम तक पहुँची और बड़े तवातर से पहुँची, इसके ऊपर तो हदीस भी है, वो भाई साहब को शायद हदीस का पता नहीं चला या फिर वो फिर मुनकर हदीस हैं। बहरहाल मुनकर नबूवत का तो मुकदमा किया जा सकता है उसके ऊपर कि मुनकर ईमान नबूवत, कि भाई मैं नबूवत के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत पर ईमान रखता भी हूँ कि नहीं, मुझे ये तहकीक करनी पड़ेगी कि अताशा की उम्र निकालनी शुरू कर दी है। वैसे भी जिस बंदे को, अच्छा दूसरा जो शाख है उसकी वो ये कि अल्लाह के अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में कह दिया कि तुम्हारे बीवियों की अगर हैज शुरू हो जाए तो, तुम्हारे निकाह के बाद अगर उनका हैज शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि हैज आने से पहले भी शादी हो सकती है। तो ये तो पता नहीं कैसे डिफेंड करेंगे ये आजकल के जो है ना लेफ्ट रेडिकल मुस्लिम्स के जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हुए हैं, उनको हाउ डू दे एक्चुअली सेटल देयर साइकोलॉजी कि जब कुरान पाक की ये आयत पढ़ते हैं वो, या तो पढ़ते ही नहीं या फिर वो उन लोगों में बैठे हैं जिन लोगों ने एतराज़ तो किया है कुरान पाक में और उन्होंने इनको कुरान नहीं सिखाया है, क्योंकि ये तो मोतरजीन से कुरान सीखते हैं ना, और हमारे वेस्टर्न मुस्लिम्स जो हैं जब तक किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं होता इनको अपने दीन का ही नहीं पता होता। सो बेसिक सिंपल सा आंसर ये है कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हज़रत इस्माईल के गर्दन पे छुरी चलाने के, और यहूदी तो कहते हैं हज़रत इसहाक पे चलाई थी ना, चलें जिस पे भी चलाई थी, था तो इंसान का बच्चा ही और वो अभी अपना ही था, वो तो कहते हैं वो बड़ा बच्चा ज़्यादा अजीज इसहाक था, उसके ऊपर जब छुरी चलाई थी तो ये दिस शुड हैव बीन अ वेरी बिग केस ऑन देम, बट वी डोंट, बिकॉज हमें इब्राहिम की नबूवत के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, ना ही उनको है, इसलिए दोनों ने एतराज़ नहीं किया। अब ये एतराज़ रह गया एथीस्ट के हाथ, और वो एथीस्ट तो भरपूर एतराज़ करते हैं यहूदियों पे कि यार तुम ऐसे नबी ऐसी किताब, नबी को तो नबी तो कॉन्सेप्ट ही नहीं मानते ना, वो कहते हैं ऐसी किताब पे ईमान लाते हो जिसमें एक बाप अपने बच्चे को ज़बह कर देता, और फिर वही एथीस्ट उठ के मुसलमानों को भी करता है साथ, लेकिन यहूदियों के बैनर भी लग देते हैं कि तुम्हारे नबी ने तो 11 शादियां कर ली और तुम्हारे नबी ने तो 9 साल की बच्ची से शादी कर ली, उनके अपने नबी 300-300 शादियां करके बैठे हुए, जो कि हमारे भी नबी, हमें कोई इतराज़ नहीं इस बात पे, हमें नबूत से इतराज़ नहीं है तो उनके नबी के किसी भी काम से इतराज़ नहीं है। इसी को कहते हैं आमन तो बिल्लाही व मलाइकाती ही व कुतुबी ही व रसूली। रसूली का मतलब ही होता है कि भाई आप ये अल्लाह के अहकाम है, दुनिया में चलता फिरता अल्लाह का हुक्म चल रहा है हमारे सामने, नबी इसको कहते हैं। अब नबी अल्लाह ताला जो भी हुक्म दे, अब हमें इस तरह, और ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है, मेरा अपना फलसफा यह है इस पर कि अल्लाह ताला जान के अंबिया से ऐसे टेस्ट करवाते हैं, जैसे हज़रत इब्राहिम से जब ज़बह करवाया, हज़रत ज़ैनब से जो शादी करवाई, हज़रत आयशा से जो शादी करवाई, वह तो मुझे तो यकीन है अरब ने उसका कोई एतराज़ नहीं किया था, ये तो बाद का एतराज़ है हमारा अपना, अरब को कोई टेंशन नहीं थी इस बात से, मगर अल्लाह ताला ने जान के अंबिया से ऐसे काम करवाए हैं जो क़यामत के आखिर, क़यामत से पहले पैदा होने वाले आखिरी दिन में जो बच्चा पैदा होगा, जो एटलीस्ट वो जो बंदा होगा, जो सोचता होगा, उसके ईमान के टेस्ट होते हैं कि नबी अगर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो फिर वो ईमान लाएगा, या नबी किसी और मुताबिक ज़िंदगी गुजारे जो उसके अपने मिजाज में पूरी नहीं उतरती तब वो ईमान लाए, अगर उसके मिजाज के खिलाफ नबी पूरा नबी काम कर रहा है तो उसको फिर अपना मिजाज बदलना पड़ेगा। ये है इस्लाम का जो ईमान का टेस्ट है। हम लेकिन चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही काम करें जो इस वक्त हमारा इस माशरे में, हमारे माशरे के नॉर्म्स हैं, उसके मुताबिक नबी चल रहा हो। ये हमारी जो साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, नबी की भी साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट हुई, अल्लाह ताला उसको पै दर पै तोड़ते हैं, एक एक नबी से, हर नबी से ऐसे काम करवाएं अल्लाह ताला ने जो उस वक्त मोतरजीन के दिल के नफाक को जाहिर करके बाहर ले आता है। और यही बात है कि मैं साइंस की बिना पे इस्लाम के ऊपर ईमान के ख़िलाफ़ हूँ। जब कोई वेस्टर्न या कोई और फिलॉसफी इस्लाम को पूरी करे तो हम मान लेते हैं, और कुरान पाक के नुस्खे इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी को मिले अरब में से, जॉर्डन में से, उन्होंने कहा ये देखो कुरान पाक इनका दुरुस्त है, और मुसलमानों ने वायरल करना शुरू कर दिया कि देखा हमारा कुरान दुरुस्त है, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने बता दिया तो लोगों के ईमान ताज़ा हो गए, और लोग कह भी रहे थे कि देखिए हमारा ईमान गहत ताज़ा हुआ है, नाउज बिल्ला अगर वो गलत साबित कर देते तो ईमान फारिग हो जाता हमारा। ये हालात हैं हमारे कि हम उनको उनकी रिसर्च और उनकी साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट के ताबे हो गई है हमारी साइकोलॉजी की, जब वो सही कहेंगे तो तब सही होगा। हमारा ईमान असर नो इसकी तजदीद होने वाली है अगर हम इस तरह की बातें सोच रहे हैं। ये सवाल करना ही अपने इस ईमान की ऊपर दरार डालना है कि यार अल्लाह के नबी सल्लम ने शादी क्यों की, अल्लाह ताला के नबी सल्लम 100 सारी शादियां करते, हमें क्या क्यों इतराज़ करना था। अजीब सी बात है। इस बारे में तो मुझसे सवाल किया गया था कि हमें 4 शादियों की दाता, अल्लाह के नबी सल्लम ने 11 क्यों की। सोचें तो सही, ये हालात हो गए कि उनको नबी का लफ्ज ही नहीं समझ आया अभी तक। और रसूल तक तो बहुत बात की बात है, रसूल तो फलसफा लेके आता है ना, नबी फलसफा तो नहीं लेके आता, पुराने फलसफे को आगे पूरा करता है। रसूल का तो बहुत आगे का मकाम है, जो इन लोगों को क्या समझ आना है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ फिलोसॉफिकल डिसोनेंस। दो फलसफे टकरा जाते हैं तो जिस फलसफे के असल में ताबे होते हैं उसकी नुमाइश हो जाती है।